एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जो दिखती तो नहीं पर हमारे होने के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की।
नमस्ते, और ये जो हम खोजबीन करेंगे ये प्रोफेसर सेबेस्टियन जी बी एमीज की किताब बैक्टीरिया के आधार पर होगी। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की वो जानी मानी सीरीज है ना, ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
हाँ हाँ, वो छोटी सी किताबें जो बड़े बड़े टॉपिक्स को कवर करती हैं।
बिल्कुल, उनका हिस्सा है ये। और ये सीरीज मशहूर इसीलिए है कि मुश्किल विषयों को भी कम शब्दों में पर गहराई से समझा देती है।
और देखिए, ये विषय आज इतना जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, हम एंटीबायोटिक्स पर कितने कितने निर्भर हो गए हैं।
हाँ,
लेकिन साथ ही ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब दवाओं का असर ना करना, ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल संकट बन गया है।
बिल्कुल, बहुत बड़ा।
और दूसरी तरफ अब हम ये भी समझने लगे हैं कि हमारे अपने शरीर के अंदर जो खरबों बैक्टीरिया रहते हैं, हमारा माइक्रोबायोम
जी,
वो कितना जरूरी है। तो ये किताब ना इन सारी जटिल चीजों को समझने में बड़ी मदद करती है।
सही कहा। अक्सर होता यह है कि हम बैक्टीरिया का नाम सुनते ही सोचते हैं, अरे ये तो बीमारी फैलाने वाले कीटाणु हैं।
हाँ, बस वही इमेज आती है दिमाग में।
पर प्रोफेसर एमिस इस सोच को बिल्कुल पलट देते हैं। वो हमें समझाते हैं कि बैक्टीरिया असल में पृथ्वी पर जीवन के सबसे सफल, सबसे पुराने और सबसे बुनियादी रूपों में से एक है। वो सिर्फ दुश्मन नहीं है।
अच्छा।
हाँ, वो तो इस ग्रह पर जीवन बनाने वाले उसके साथी भी हैं।
वाह, तो किताब की गहराइयों में जाने से पहले लेखक के बारे में थोड़ा जानना दिलचस्प रहेगा। प्रोफेसर सेबेस्टियन जी बी एमिस कौन है ये?
जी, ये एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में माइक्रोबियल कीमोथेरेपी के बहुत जाने माने प्रोफेसर रहे हैं। अब एमेरिटस प्रोफेसर है।
ओके।
और ये अपने फील्ड के मतलब दिग्गज माने जाते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और बैक्टीरिया की जेनेटिक्स। आप समझ लीजिए, दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स में इनकी गिनती होती है।
अच्छा।
इनका पूरा का पूरा करियर इसी चीज को समझने में लगा है कि बैक्टीरिया का बर्ताव कैसा होता है, एंटीबायोटिक्स उन पर कैसे काम करती हैं, और सबसे अहम बात कि बैक्टीरिया इन दवाओं से बचने के तरीके यानी रेजिस्टेंस कैसे पैदा कर लेते हैं। मतलब 400 से ज्यादा साइंटिफिक पेपर्स हैं इनके नाम।
400? ये तो बहुत बड़ी संख्या है।
है ना, कोई छोटी बात नहीं है।
जो बात मुझे इनकी प्रोफाइल में सबसे खास लग रही है वो ये है कि इनकी एक्सपर्टाइज दो लेवल पर है। एक तो ये बैक्टीरिया के फंडामेंटल्स को समझते हैं।
हाँ बिल्कुल, बेसिक बायोलॉजी
कि सेल लेवल पर वो कैसे काम करते हैं, और दूसरी तरफ इन्हें क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी की भी गहरी समझ है। मतलब अस्पतालों में इन्फेक्शंस और इलाज के जो प्रैक्टिकल पहलू होते हैं
जी
वो भी ये जानते हैं। ये कॉम्बिनेशन कम ही मिलता है।
बिल्कुल सही कहा, और शायद इसी वजह से वो साइंस की इन गहरी बातों को पॉलिसी मेकिंग और पब्लिक हेल्थ से जोड़ पाते हैं। वो कई इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और दवा कंपनियों के सलाहकार भी रहे हैं। तो ये किताब सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, ये उनके बरसों के अनुभव और उनकी जो गहरी समझ है उसका निचोड़ है। और उन्होंने इसे आम पढ़ने वालों के लिए आसान बनाया है। इसमें साइंटिफिक एक्यूरेसी तो है ही, साथ में ये भी पता चलता है कि बैक्टीरिया का हमारे समाज पर, हमारे स्वास्थ्य पर और हमारे होने पर कितना गहरा असर है।
तो अब आते हैं किताब पर। जैसा नाम से ही जाहिर है, बैक्टीरिया अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ये इस विशाल टॉपिक का एक संक्षिप्त पर बहुत व्यापक परिचय देती है। इसका मकसद क्या है? सिर्फ ये बताना नहीं कि बैक्टीरिया खतरनाक है, बल्कि
एक बैलेंस्ड तस्वीर देना।
हाँ, संतुलित।
संतुलित इसलिए क्योंकि ये किताब बैक्टीरिया की उन जरूरी भूमिकाओं पर भी रोशनी डालती है जिनके बिना शायद पृथ्वी पर जीवन होता ही नहीं।
अच्छा।
हाँ, और साथ ही उन चुनौतियों को भी सामने रखती है जो वो हमारे स्वास्थ्य और मॉडर्न मेडिसिन के लिए खड़ी करते हैं। किताब एक तरह से हमें सफर पर ले जाती है। बैक्टीरिया क्या है, वो कैसे बने, उनमें कितनी तरह की वैरायटी है, माहौल में उनका क्या काम है, और इंसानों के साथ उनका रिश्ता कितना पेचीदा है।
और इस सफर में कई पड़ाव हैं, जैसे कि बैक्टीरिया की बनावट कैसी है, वो अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ जेनेटिक जानकारी शेयर करते हैं, पृथ्वी की जो न्यूट्रिएंट साइकिल हैं उनको चलाने में उनका क्या रोल है।
हाँ, एंटीबायोटिक्स की खोज कैसे हुई,
वो कैसे काम करती हैं, और फिर वो बड़ा सवाल, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों और कैसे फैल रहा है, ये हमारे लिए इतना बड़ा संकट क्यों बनता जा रहा है।
लेकिन जैसा आपने कहा, ये सिर्फ डराने वाली कहानी नहीं है, ये जरूरी है किताब का एक अच्छा खासा हिस्सा उन बैक्टीरिया के बारे में है जो हमारे दोस्त हैं।
अच्छा, दोस्त बैक्टीरिया?
बिल्कुल, जो हमारे पाचन में मदद करते हैं, दही पनीर जैसे खाने बनाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं और यहाँ तक कि अब तो पर्यावरण साफ करने में भी मददगार साबित हो रहे हैं।
तो कुल मिलाकर प्रोफेसर, एमएस का लक्ष्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है, वो हमें बैक्टीरिया के प्रति एक ज्यादा कह सकते हैं समझदार नजरिया अपनाने के लिए कह रहे हैं।
हाँ, एक सूक्ष्म दृष्टि।
उनका तर्क है कि अगर हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या नई नई बीमारियां, क्लाइमेट चेंज या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटना है तो हमें बैक्टीरिया को समझना ही होगा। उन्हें सिर्फ दुश्मन मानकर खत्म करने के बजाय हमें उनके साथ समझदारी से रहने और उनका मैनेजमेंट करने के तरीके खोजने होंगे।
बिल्कुल, चलिए अब किताब के कुछ अहम हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। शुरू के चैप्टर्स इसी आइडिया से शुरू होते हैं कि बैक्टीरिया पृथ्वी पर जीवन के सबसे पुराने और सबसे कामयाब रूप है। अरबों साल से हैं वो यहाँ।
अरबों साल?
सोचिए, वो इतने छोटे हैं कि दिखते नहीं, और शायद इसीलिए हम अक्सर उनके महत्व को कम आंकते हैं।
और ये सिर्फ पुराने ही नहीं है, इन्होंने तो इस प्लैनेट को रहने लायक बनाया है। किताब में जिक्र है कि कैसे शुरू के बैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस के जरिए पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन भरी।
हाँ, जिससे हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स जीव बन सके।
उनकी बनावट भले ही सिंपल लगे, एक सेल वॉल, एक मेम्ब्रेन, अंदर जेनेटिक मटीरियल, लेकिन यही सादगी उन्हें तेजी से बदलने और अपनी संख्या बढ़ाने में मदद करती है।
यही पर वो ग्राम स्टेन टेस्ट की बात आती है।
हाँ, ग्राम स्टेन ये लैब में होने वाला एक सिंपल टेस्ट है।
क्या होता है इसमें?
ये बैक्टीरिया को उनकी सेल वॉल की बनावट के आधार पर मोटी है या पतली दो मेन ग्रुप्स में बांट देता है। और ये वर्गीकरण इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे अक्सर डॉक्टर को ये अंदाजा लगाने में मदद मिलती है कि कौन सी एंटीबायोटिक शायद ज्यादा सरदार होगी।
अच्छा, ये बात है, बिल्कुल। और फिर अगले चैप्टर्स बताते हैं कि ये जीते कैसे हैं, मतलब उनका लाइफस्टाइल कैसा है। ऊर्जा पाने के तरीके तो हैरान करने वाले हैं। कुछ सूरज की रोशनी इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस, कुछ केमिकल से एनर्जी बनाते हैं कीमोसिंथेसिस। वो लगभग हर जगह हर कंडीशन में जीने का तरीका खोज ही लेते हैं।
और अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं?
उसके लिए मेनली बाइनरी फिशन यूज करते हैं, मतलब एक सेल दो में बढ़ जाता है, इससे वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज है जो बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा स्पेशल बनाती है, और वो है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर।
हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन आपने कहा ये बहुत जरूरी है समझना, खासकर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए। क्या मतलब है इसका?
इसका मतलब है कि बैक्टीरिया सीधे सीधे एक दूसरे के साथ जेनेटिक जानकारी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले जीन्स। ये वैसा नहीं है जैसे माँ बाप से बच्चों में गुण जाते हैं।
ओह,
ये कुछ ऐसा है जैसे आप सड़क पे किसी अजनबी से मिले और उससे कोई नया स्किल सीख लें। प्लाज्मिड्स नाम के छोटे डीएनए के टुकड़े होते हैं, वो इस जानकारी को एक बैक्टीरिया से दूसरे तक ले जाते हैं।
अच्छा।
और इसी एचजीटी की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले जीन किसी पॉपुलेशन में जंगल की आग की तरह फैल सकते हैं। ये बैक्टीरिया को एक तरह का सोशल नेटवर्क देता है इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। ये हमारी दवाओं के खिलाफ उनकी सबसे बड़ी ताकत है, और ये एवोल्यूशन के उन नियमों को चैलेंज करता है जो हम बड़े जीवों में देखते हैं।
वाह, ये तो सच में कमाल की क्षमता है। और उनकी ये जो जबरदस्त अडैप्ट करने की क्षमता है, ये सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं है, ये उन्हें पृथ्वी पर एक बहुत जरूरी भूमिका भी देती है ना, जैसे आपने कहा ग्रह के इंजीनियर की तरह।
एकदम सही। चैप्टर 5 इसी पर है। बैक्टीरिया पृथ्वी के रिसाइकलर्स हैं। वो कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस जैसे जरूरी एलिमेंट्स के ग्लोबल साइकिल्स को चलाते हैं।
जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन?
बिल्कुल, हवा में जो नाइट्रोजन गैस है उसे ऐसे रूप में बदलना जिसे पौधे इस्तेमाल कर सकें, ये काम सिर्फ कुछ खास बैक्टीरिया ही कर सकते हैं। इसके बिना तो खेती बाड़ी और पूरा इकोसिस्टम ही ठप हो जाए। वो मरे हुए जीवों और कचरे को तोड़कर न्यूट्रिएंट्स को वापस मिट्टी और पानी में मिलाते हैं। अगर बैक्टीरिया ना हो तो सच में हमारा पूरा बायोस्फीयर ही ढह जाएगा।
लेकिन फिर कहानी का वो दूसरा पहलू भी आता है, वो बैक्टीरिया जो हमें बीमार करते हैं। किताब हमें उनकी खोज के इतिहास में भी ले जाती है, कैसे ल्यूवेनहॉक ने पहली बार माइक्रोस्कोप से उन्हें देखा।
हाँ, और फिर रॉबर्ट कोच और लुई पास्चर ने जर्म थ्योरी दी,
जिससे पता चला कि बीमारियां कीटाणुओं से फैलती हैं।
हाँ, और ये जानना जरूरी है कि बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया, जिन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं, वो बैक्टीरिया की कुल आबादी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। ज्यादातर तो या तो नुकसान नहीं पहुंचाते या फायदेमंद होते हैं।
अच्छा, ज्यादातर?
हाँ, कई पैथोजेंस तो अवसरवादी होते हैं, मतलब वो तभी नुकसान पहुंचाते हैं जब हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो या उन्हें शरीर में कहीं घुसने का मौका मिल जाए। ये पैथोजेंस कुछ खास हथियार इस्तेमाल करते हैं जिन्हें विरुलेंस फैक्टर्स कहते हैं।
जैसे कि?
जैसे जहरीले पदार्थ बनाना जो हमारी कोशिकाओं को डैमेज करते हैं, या हमारे टिश्यूज पर हमला करने वाले एंजाइम्स बनाना, या फिर हमारी इम्यून सिस्टम की सेल से छिपने या उन्हें धोखा देने की क्षमता। लेकिन किताब बार बार याद दिलाती है कि इस छोटे से हिस्से की वजह से हमें सारे बैक्टीरिया को दुश्मन नहीं मान लेना चाहिए।
और फिर आता है मेडिकल हिस्ट्री का वो सुनहरा दौर, एंटीबायोटिक क्रांति। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और पेनिसिलिन की कहानी तो हम सबने सुनी है।
हाँ बिल्कुल।
इलाज मुमकिन हो गया, सर्जरी सेफ हो गई। किताब समझाती है कि ये दवाएं काम कैसे करती हैं। वो बैक्टीरिया की कोशिकाओं की उन चीजों को टारगेट करती हैं जो हमारी अपनी सेल्स में नहीं होती,
जैसे उनकी सेल वॉल बनाने की क्षमता।
हाँ।
लेकिन हर क्रांति की अपनी चुनौतियां होती हैं। एंटीबायोटिक्स के इतने बड़े पैमाने पे इस्तेमाल का एक अनचाहा नतीजा निकला, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये कोई नई चीज नहीं है, बैक्टीरिया तो हमेशा से बदलते रहे हैं। लेकिन हमने खासकर मेडिसिन में और उससे भी ज्यादा एग्रीकल्चर में एंटीबायोटिक्स का जिस तरह से बेतहाशा और अक्सर गलत इस्तेमाल किया है, उसने इस प्रोसेस को खतरनाक रूप से तेज कर दिया है।
और बैक्टीरिया ने भी बचने के तरीके निकाल लिए हैं।
हाँ, कई तरीके ईजाद कर लिए हैं। दवा को सेल से बाहर फेंक देना, दवा को तोड़ने वाले एंजाइम बनाना, या जिस चीज पर दवा असर करती थी उसी को बदल देना।
और इसी का नतीजा है वो सुपर बग्स जैसे MRSA।
बिल्कुल। MRSA, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टैफिलोकॉकस ऑरियस, ये एक ऐसा सुपर बग है जिस पर कई कॉमन एंटीबायोटिक्स बेअसर हो चुकी हैं।
बिल्कुल।
और ड्रग रेजिस्टेंट TB, ये आज की मेडिसिन के सामने एक बहुत ही गंभीर और रियल खतरा है। हम उस दौर में वापस जाने का खतरा उठा रहे हैं जहां आम इन्फेक्शन भी जानलेवा हो सकते थे।
ये तो वाकई चिंता की बात है।
है? लेकिन किताब हमें यही नहीं छोड़ती। आखिरी चैप्टर्स उम्मीद जगाते हैं और आगे का रास्ता दिखाते हैं। वो फिर से फायदेमंद बैक्टीरिया पर फोकस करते हैं। हमारा ह्यूमन माइक्रोबायोम, हमारे पेट में, त्वचा पर, हर जगह रहने वाले खरबों बैक्टीरिया।
हाँ, हमारे साथ ही।
बिल्कुल। वो हमारे पाचन में जरूरी विटामिन्स जैसे के और B12 बनाने में और हमारी इम्यून सिस्टम को ठीक से काम करने के लिए ट्रेन करने में मदद करते हैं।
और सिर्फ हमारे शरीर के अंदर ही नहीं, बाहर भी तो हैं इनके फायदे।
बिल्कुल। दही, पनीर, अचार, इडली, डोसा, ये सब फर्मेंटेड फूड्स बैक्टीरिया की ही तो देन है।
बिल्कुल।
हाँ, बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया का इस्तेमाल इंसुलिन जैसी दवाएं बनाने से लेकर प्लास्टिक जैसे नए मटेरियल बनाने तक में हो रहा है। और अब तो वैज्ञानिक ऐसे बैक्टीरिया भी खोज रहे हैं जो तेल रिसाव या प्लास्टिक कचरे को साफ करने में मदद कर सकें।
तो आगे का रास्ता क्या है? किताब क्या सुझाव देती है?
कुछ जरूरी बातें हैं। पहला, एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप, यानी जो एंटीबायोटिक्स हमारे पास हैं उनका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें, सिर्फ जरूरत पड़ने पर और सही तरीके से।
दूसरा,
नए वैकल्पिक इलाजों पर रिसर्च करना, जैसे बैक्टीरियोफेज थेरेपी। ये वो वायरस होते हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया पर हमला करते हैं।
अच्छा, बैक्टीरिया खाने वाले वायरस।
हाँ, कह सकते हैं। तीसरा, बेहतर और तेज डायग्नोस्टिक टेस्ट डेवलप करना ताकि जल्दी पता चले कि इन्फेक्शन बैक्टीरिया से है या वायरस से, और अगर बैक्टीरिया से है तो कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी।
और सबसे जरूरी,
ग्लोबल कोऑपरेशन, क्योंकि बैक्टीरिया पासपोर्ट लेकर नहीं चलते। एक जगह पैदा हुआ रेजिस्टेंस पूरी दुनिया में फैल सकता है, तो अब लक्ष्य बैक्टीरिया का सफाया करना नहीं हो सकता, बल्कि उनके साथ समझदारी से मिलकर रहना है।
इस पूरी बातचीत से कुछ बहुत अहम संदेश या थीम्स निकल कर आ रहे हैं। पहला तो ये, बैक्टीरिया का द्वैत, मतलब वो दोहरे हैं।
हाँ, दो पहलू हैं उनके।
वो हमारे लिए जीवन देने वाले भी हैं और जान लेने वाले भी हो सकते हैं। उन्हें सिर्फ अच्छा या बुरा कहना ठीक नहीं, हमें एक बारीक नजरिए की जरूरत है।
बिल्कुल। दूसरा थीम है, अनुकूलन के उस्ताद बैक्टीरिया बदलाव लाने में माहिर हैं, खासकर वो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर HGT की वजह से। वो कोई रुकी हुई चीज नहीं, बल्कि एक डायनामिक, लगातार बदलता हुआ ग्लोबल सुपर ऑर्गेनिज्म है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसी का एक सबूत है। वो हमारी चुनौतियों का सामना करना सीख रहे हैं और बहुत तेजी से।
तीसरा जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो है, मानव शरीर एक पारिस्थितिकी तंत्र। ये सोचना कि हम सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि अपने अंदर खरबों माइक्रोबियल साथियों के साथ रहने वाला एक चलता फिरता इकोसिस्टम है।
हाँ, ये सोच ही बदल देता है।
ये हमारे स्वास्थ्य, हमारे खाने पीने, हमारी साफ सफाई की आदतों, सब पर सोचने का तरीका बदल देता है। जैसे भारत में हमारी पारंपरिक थाली में जो इतनी वैरायटी होती है, अलग अलग अनाज, दालें, सब्जियां, दही, अचार, वो शायद हमारे गट माइक्रोबायोम को हेल्दी और डाइवर्स रखने में बहुत मददगार है।
बिल्कुल, हो सकती है। चौथा थीम है एंटीबायोटिक विरोधाभास और संकट। ये कितनी बड़ी आयरनी है कि जो दवाएं 20वीं सदी की सबसे बड़ी मेडिकल कामयाबियों में थीं,
हाँ,
वही आज एक बड़े संकट की वजह बन रही हैं। ये एक इवोल्यूशनरी हथियारों की दौड़ है और फिलहाल हम अपनी स्ट्रेटजी की वजह से इसमें पीछे होते दिख रहे हैं। ये भविष्य का नहीं, आज का संकट है।
और पांचवा, वैज्ञानिक साक्षरता और वैश्विक सहयोग की जरूरत। जब आम लोगों को बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक्स के बारे में सही जानकारी नहीं होती, जैसे वायरल सर्दी जुकाम में एंटीबायोटिक मांगना,
हाँ, ये बहुत कॉमन है,
तो समस्या और बढ़ती है। और क्योंकि बैक्टीरिया बॉर्डर नहीं मानते, इसलिए इस ग्लोबल प्रॉब्लम से निपटने के लिए दुनिया भर के देशों को मिलकर काम करना ही होगा।
किताब में कुछ ऐसी लाइनें हैं जो इन आइडियाज को बहुत अच्छे से पकड़ती हैं। हम उन्हें विचारणीय पंक्तियां कह सकते हैं। जैसे पहला विचार, बैक्टीरिया जीवन के दुश्मन नहीं बल्कि जीवन के प्रवर्तक हैं। उनके बिना हम जैसे जटिल जीव कभी विकसित या जीवित नहीं रह सकते थे। ये हमें याद दिलाता है कि हम उनके कितने कर्जदार हैं।
एक और विचार जो सोचने पर मजबूर करता है।
दूसरा विचार, हर बार जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं, हम बैक्टीरिया के विकास में एक वैश्विक प्रयोग कर रहे होते हैं, सबसे योग्य और प्रतिरोधी को चुनते हुए। ये हमारे छोटे छोटे एक्शन के बड़े नतीजों की तरफ इशारा करता है। हर गोली मैटर करती है। इसका युग समाप्त हो सकता है, लेकिन बैक्टीरिया का युग शाश्वत है। या इसी से मिलता जुलता एक और कोट है, हम एक बैक्टीरियल दुनिया में रहते हैं, हम सिर्फ एक्सटेंडेड वीजा वाले टूरिस्ट हैं।
ये तो गहरी बात है।
ये दिखाता है कि बैक्टीरिया कितने टिकाऊ और अडेप्टेबल हैं। वो यहाँ हमसे बहुत पहले थे और शायद हमारे बाद भी रहेंगे।
और चौथा विचार माइक्रोबायोम की अहमियत बताता है। हम जीवाणु रहित व्यक्ति नहीं बल्कि चलते फिरते पारिस्थितिकी तंत्र हैं। हमारा स्वास्थ्य उन खरबों रोगाणुओं के स्वास्थ्य से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है जो हमारे शरीर को अपना घर कहते हैं। ये हमारे और हमारे माइक्रोबियल दोस्तों के बीच की गहरी इंटरडिपेंडेंस की बात करता है।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? हम इन्हें कैसे लागू कर सकते हैं? पर्सनल हेल्थ के लेवल पर कुछ चीजें की जा सकती हैं। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स तभी लें जब डॉक्टर कहे कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और जरूरी है।
हाँ, वायरल में बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल, सामान्य सर्दी जुकाम में जिद ना करें, और अगर एंटीबायोटिक लेनी पड़े तो पूरा कोर्स करें, भले ही बीच में ठीक लगने लगे।
और अपने अच्छे बैक्टीरिया का भी ध्यान रखें। अपने खाने में फाइबर वाली चीजें, फल, सब्जियां, साबुत अनाज शामिल करें।
हाँ, और वो पारंपरिक फर्मेंटेड फूड्स जैसे दही, छाछ, अचार, कांजी, इडली, डोसा, ये हमारे गट माइक्रोबायोम के लिए अच्छे हो सकते हैं। और हाँ, हर वक्त एंटीबैक्टीरियल साबुन और सैनिटाइजर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल शायद जरूरी नहीं है।
नॉर्मल साबुन पानी काफी है ज्यादातर टाइम।
हाँ, थोड़ी बहुत गंदगी हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करने में मदद कर सकती है।
सामाजिक जागरूकता के लेवल पर भी हमारी भूमिका है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में जो पब्लिक हेल्थ मैसेज आते हैं, उन्हें समझें और दूसरों को भी समझाएं। उन पॉलिसीज को सपोर्ट करें जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में एंटीबायोटिक्स के गैर जरूरी इस्तेमाल को रोकती हैं। एक जगह का मिसयूज हम सबको प्रभावित करता है।
और आखिर में मेडिकल डिसीजंस में ये जानकारी हमें बेहतर पेशेंट बनाती है। हम समझ पाते हैं कि डॉक्टर कोई टेस्ट क्यों करा रहा है, या एंटीबायोटिक क्यों दे रहा है या क्यों नहीं दे रहा। हम अपनी सेहत के बारे में ज्यादा इन्फॉर्म्ड फैसले ले सकते हैं।
तो इस पूरी ज्ञान गोष्ठी से हमारे लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा? मेरे लिए तो ये एहसास कि बैक्टीरिया के साथ हमारा रिश्ता कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना नाजुक और कितना जरूरी है। हमें वो दुश्मन पर जीत वाली सोच से आगे बढ़ना होगा।
हाँ, संतुलन की तरफ।
संतुलन, मैनेजमेंट और समझदारी भरे सह अस्तित्व की ओर। और पर्सनली वो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर वाली बात कि बैक्टीरिया आपस में जानकारी इतनी आसानी से शेयर कर सकते हैं, ये क्षमता मुझे हैरान भी करती है और थोड़ा अलर्ट भी।
मेरे लिए सबसे बड़ा बदलाव ये सोचना है कि हम सब इंसान, जानवर, पौधे, माइक्रोब्स एक बड़े इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। हम अलग नहीं हैं। और ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम एंटीबायोटिक्स के साथ जो कर रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में अधूरी समझ के साथ दखल देना, क्या वैसा ही हम नेचर के दूसरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जैसे कि क्लाइमेट के साथ भी कर रहे हैं?
ये एक बहुत जरूरी सवाल है, ऐसा सवाल जिस पर शायद हम सभी को थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।